نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تعالی شانہ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے, اور جتنی نعمت بڑی ہوتی ہے شکر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ نے معصوم بنایا تھا. ہر نبی معصوم ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کی بارش ہر وقت برستی رہتی تھی, تو حق تعالی شانہ نے ایک انعام یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض و تقدیر آپ معصوم نہ ہوتے تو بھی اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف کر دیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اور اس قسم کی اور نعمتوں کے شکر میں پوری پوری رات قیام میں گزارتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر اور پیروں پر ورم آ جاتا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفتر قدمہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے تو آپ سے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر بالفرض و تقدیر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی تو بھی سب کچھ معاف ہے. آپ سے تو غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی, لیکن اگر بالفرض و تقدیر ہو بھی جاتی تو بھی معاف, پھر آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا, اللہ تعالی شانہ نے مجھے اس قدر نوازا ہے تو شکر بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے فرط تشکر میں یہ راتوں کا قیام کرتا ہوں. تو ہر نعمت پر شکر ہونا چاہیے, نعمت بڑی تو شکر بھی زیادہ. ہم لوگوں کو اللہ تعالی شانہ نے جس درجے میں بھی ہو علم نبوت سے وابستہ کیا, بعضوں کو براہ راست معلم بنا کر یا طالب علم بنا کر, اور بعضوں کو بالواسطہ ماں باپ اور والی بنا کر. لیکن علم نبوت سے ہمیں وابستہ ضرور کیا, تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے اس کا شکر بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے. مولانا ایاز صاحب زید مجدہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے اس سلسلے میں بات کی ہے, اور میں علیل بھی ہوں, اس لیے صرف اس پروگرام کا, اس مبارک پروگرام کا حصہ بننے کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے دل میں اس نعمت کی قدر و قیمت, اس علم کی عظمت پیدا کرنی پڑے گی. یہ علم بہت اونچا ہے, یہ علم اللہ تعالی شانہ نے بھیجا ہے اور اپنی مخلوق میں سے سب سے افضل مخلوق کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اور یہ علم جو ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اس سے یہ نکمی دنیا نہیں کمائی جاتی، اس سے آخرت کمائی جاتی ہے. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، یہ اس علم کی صفت بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ علم جو ہے وہ علم ہے جس کے ذریعے صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی تلاش کی جاتی ہے. یہ علم نہ حصول جاہ کے لیے ہے نہ حصول مال کے لیے ہے، یہ حصول منصب کے لیے نہیں. یہ علم جو ہے یہ آخرت والا علم ہے، اور اس سے صرف آخرت طلب کی جاتی ہے. بہت اونچا علم، بہت اونچا علم. یہ علم اگر دنیا میں نازل نہ ہوتا تو اس روئے زمین پر ایک بھی انسان نہ ہوتا. شکلیں انسانوں کی ہوتی لیکن وہ جانور بن چکے ہوتے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، اگر دنیا میں علماء نہ ہوتے، اس لیے کہ علم خود تو رہتا نہیں، وہ تو علماء کے ذریعے رہتا ہے، تو اگر دنیا میں علماء نہ ہوتے یعنی دنیا میں علم نہ ہوتا تو لوگ چوپایوں کی طرح ہو جاتے. بس کھانا پینا جانوروں کی طرح ہو جاتا کہ کھاؤ پیو اور بس زندگی گزارو، مقصد کوئی نہ ہوتا. تو شکر کے لیے سب سے پہلی بات جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کی اہمیت کو دل میں بٹھایا جائے، اس علم کی عظمت کو بٹھایا جائے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسے میں باہر کے ماحول سے بچنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا عصری علوم سے محروم رہ گیا، لیکن شکل بچانے کی یہی ہی تھی کہ مدرسے میں بھیج دیا. اگر یہ سیدھا چل رہا ہوتا، اس کے بگڑنے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں اسے عصری اداروں میں بھیجتا اور ایم اے کرواتا، پی ایچ ڈی کرواتا، بی اے کرواتا. یعنی اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اس علم سے. اس علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی علم نہیں ہے، بلکہ علم کہلائے جانے کے قابل یہ ایک ہی علم ہے. باقی سب چیزیں تو فنون ہیں، ہنر ہیں. اکاؤنٹنگ جو ہے وہ علم نہیں ہے، وہ ایک ہنر ہے، ہنر جس کے ذریعے انسان حساب کر لیتا ہے. لو جو ہے، لو یہ علم نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے جس کے ذریعے لوئر کورٹ میں جا کر اپنے کلائنٹ کو بچاتا ہے. یہ ڈاکٹری کا علم جو ہے یہ علم نہیں ہے، ایک ہنر ہے جس کے ذریعے ڈاکٹر بیمار کو بیماری سے نجات دلاتا ہے. جسے ایک بڑھئی ہے، کارپینٹر، یہ ہنر ہے. تو اپنے ہنر سے ٹیبل بناتا ہے، کرسی بناتا ہے. تو ایک سرجن ہے، یہ ہنر ہے، وہ اپنی ایکسپرٹیز سے مریض کو بچا لیتا ہے آپریشن کر کے. آرکیٹیکچر ایک ہنر ہے، وہ اپنے ہنر سے ایک اچھا ڈرائنگ بناتا ہے. اور یہ جتنے ہنر ہیں یہ سب کام آتے ہیں قبر تک. قبر کے بعد ان ہنروں میں سے کوئی ہنر کام نہیں آتا. علم اس کو کہتے ہیں جو قبر تک اس دنیا میں بھی کام آتا ہے और कब्र में भी काम आता है और कयामत के दिन भी काम आएगा और पुल सिरात पर भी काम आएगा और जन्नत में भी काम आएगा। जन्नत में जाने के बाद भी आलिम को आलिम का टाइटल रहेगा, उसके पास आलिम के पास आलिम का टाइटल रहेगा। लोग मौलाना ही कहेंगे वहां भी, मुफ्ती साहब कहेंगे वहां भी, हाफिज कुरान कहेंगे वहां भी, प्रोफेसर को कोई प्रोफेसर नहीं कहेगा, वो प्रोफेसर इस्माइल जो है वो इस्माइल हो जाएंगे जन्नत में जाने के बाद। मैं किसी भी साइंस को हकारत की नजर से नहीं देख रहा हूं, ये भी नेमतें हैं अल्लाह की तरफ से। जो लोग ये हुनर हासिल करते हैं वो भी अगर हुस्न नीयत से मखलूक की खिदमत करें तो इनके लिए हलाल जरिए माश भी हो सकता है और आखिरत में भी बहुत ऊंचे दर्जे हासिल कर सकते हैं। मेरा मकसूद सिर्फ इतना है कि एक मुसलमान को बहैसियत मुसलमान के अपने दिल में ये अकीदे की बात बिठानी चाहिए कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से बढ़कर इस रुए जमीन पर कोई इल्म नहीं है। और बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पढ़ तो लिया है हमारे बच्चे ने, बहुत ऊंचा इल्म है, लेकिन जब तक ये यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री हासिल नहीं करेगा उस वक्त तक जहीन नहीं बनेगा, होशियार नहीं बनेगा। यानी कुरान और हदीस को समझने के लिए होशियारी की जरूरत ही नहीं है, कुरान और हदीस बुद्धू भी समझ लेता है। 6 साल पढ़ता है कुरान और हदीस और बुद्धू ही रहता है, होशियार नहीं बनता। बड़े बड़े उलमा हमारी नजरों के सामने से नहीं गुजरे, इस वक्त भी दुनिया में बड़े बड़े उलमा मौजूद नहीं है जिनके पास बड़े बड़े जदीद तालीम याफ्ता मशवरे के लिए जाते हैं। बीए और एमए और पीएचडी करने वाले ऐसे लोगों के पास मशवरा करने के लिए जाते हैं जिनको ABCD का इल्म नहीं, जिनके पास GCSE नहीं। और वो अपने दिलों में तशफी पाकर वापस लौटते हैं और दूसरों को भी मशवरा देते हैं कि वहां जाइए मशवरे के लिए। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की मुस्तकिल बरकात है मेरे भाइयों, और बगैर होशियारी के तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को कोई समझ ही नहीं सकता, और उसकी बरकात इतनी है कि दुनियावी सूझबूझ भी आ जाती है उसी से। हकीम उल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से स्कूल के एक टीचर ने सवाल किया और ये कहा कि क्या वजह है कि मौलवी सब बुद्धू होते हैं। ये सवाल किया, मौलवी बुद्धू होते हैं, तो हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मौलवी बुद्धू नहीं होता, घर में जो बुद्धू बच्चा होता है उसे मौलवी बनने के लिए मदरसे में भेजा जाता है। तो हम क्या करें, पहले ही से बुद्धू है। अब तो माशाल्लाह कम से कम इंग्लैंड की हद तक हम ये कह सकते हैं कि मिजाज में बहुत तब्दीली आई और अच्छे घराने के लोग भी अपने अच्छे अच्छे बच्चों को मदारिस में भेज रहे हैं, वरना पहले यही होता था। जो होशियार है उसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ भेजो और जो किसी काम का नहीं है उसे मदरसे में भेजो। तो हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फरमाया जवाब में कि मौलवी बुद्धू नहीं होता, जो बुद्धू बच्चा होता है उसे मौलवी बनने के लिए भेजा जाता है, तो वो पहले ही से बुद्धू है, तो सनद हासिल करने के बाद भी बुद्धू ही रहेगा। और फिर हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस बुद्धू मौलवी को तुम देख रहे हो उसे तो उससे भी ज्यादा बुद्धू होना चाहिए था, ये कुरान और हदीस की बरकत है कि उसमें इतनी सूझबूझ आ गई है। इस बुद्धू को अगर स्कूल भेजते और कॉलेज भेजते तो तुम्हें पता चलता कि हकीकत में ये कितना बुद्धू था, ये मदरसे में आपने भेजा तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की बरकत से इसमें कुछ होशियारी आ गई। और फिर हजरत ने फरमाया कि हमारे मदरसे में जो बच्चे हैं वो 5 साल के लिए आप ले जाओ अपने स्कूल में, और आपके स्कूल में जो बच्चे हैं वो 5 साल के लिए हमें दे दो, फिर हम देखते हैं कि इन बुद्धों को आप क्या बना सकते हैं 5 साल के बाद। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि किसी भी जाविये से, किसी भी एंगल से, किसी भी पर्सपेक्टिव से इल्मे नबुवत के बारे में ये ख्याल एक मुसलमान के दिल में आना ही नहीं चाहिए कि इस इल्म की वजह से ये कमजोरी रह गई या रह सकती है। खुशी महसूस करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा आलिम बन रहा है, मेरा बेटा आलिम बन रहा है, मेरा बेटा आलिम बन रहा है। और बड़ी बड़ी उम्मीदें रखनी चाहिए कि पूरी उम्मत की खिदमत करेगा, ये मखलूक की खिदमत करेगा, ये दीन की खिदमत करेगा, ये हदीस की खिदमत करेगा। न भी करेगा तो क़ियामत के दिन उलमा में उसका शुमार तो होगा, उलमा की जमात में तो उठेगा। और बड़ी बड़ी नीयतें रखो। मेरे वालिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह का मैंने 12 तज़किरा किया कि मुझसे उन्होंने खुद कहा एक मरतबा कि बेटा मैं तहज्जुद में रोजाना तेरे लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरे बेटे को इल्म व अमल से आरास्ता करके ऐसा बना दे कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से मेरे बेटे को लोग दीन की बात कहने के लिए बुलाएं। जैसा गुमान वैसा अल्लाह मामला करते हैं। आपका गुमान पहले से ऐसा है कि चलो कोई बात नहीं, मदरसे में चला जाएगा, उसकी हिफाजत हो जाएगी और किसी मकतब में पढ़ा लेगा, किसी जगह इमामत करा लेगा। आपकी उम्मीदें छोटी तो अल्लाह फैसले भी छोटे करेंगे, उम्मीदें बड़ी रखो अल्लाह फैसले भी बड़े करेंगे। खुद भी बड़ी उम्मीदें रखो और बच्चों के भी जहन बनाओ। और मैंने पहले यह भी अर्ज किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं असरी उलूम में भी जहीन था, फितरतन जहीन था, तो जाहिर है कि असरी उलूम में भी जहीन ही होगा। असरी उलूम में भी जहीन था, दीनी उलूम में भी जहीन था, मेरे पास दोनों चांसेस थे। मेरे वालिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन से जहन साजी की थी, इस लाइन में मुझे डाला, मैं भी खुशी से इस लाइन में आया। और इल्म के जो हुकूक हैं, तलब इल्म के और उसके बाद उसके अमल के और उसकी तबलीग के, उसकी तालीम के, वो हक तो कौन अदा कर सकता है? हुकूक भी अदा नहीं कर सका। लेकिन 1980 में मैं मदरसे में दाखिल हुआ, दारुल उलूम बरी में। ये तकरीबन 38 साल हो गए। आज तक एक मर्तबा भी वसवसे के दर्जे में भी मुझे ख्याल नहीं आया कि मुझे असरी तालीम को हासिल करने का मौका क्यों नहीं मिला। एक मर्तबा भी। और दुनिया देखी, कई मुल्कों के असफार हुए और उसमें हर किस्म के लोगों को देखा। यहां भी हर किस्म के लोगों को मिलते हैं, लोग आते जाते हैं, हम भी दूसरे शहरों में जाते हैं, मुख्तलिफ पेशे के लोगों से मिलते हैं, जदीद तालीम याफ्ता लोगों से भी मिलते हैं। लोगों का आना जाना, ताल्लुकात बहुत ज्यादा है। मालदारों को भी देखा, उनके घरों को भी देखा, लेकिन मदरसे ने हमें रहने के लिए जो छोटी जगह दी है उसमें जो सुकून हमें मिलता है वो किसी बड़े मालदार के घर में नहीं मिलता। और कभी ये ख्याल नहीं आता कि काश के हमारा भी ऐसा घर होता, चलो यहां नहीं तो आखिरत में ही सही। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए इस इल्म की कदर व कीमत दिल में रखो। ये नबियों वाला इल्म है, नबियों वाला इल्म है। और आपका बेटा, आपकी बेटी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस बन रहे हैं। ये विरासत नबवी का तमगा किसी आबिद, किसी जाहिद, किसी को हासिल नहीं है, सिर्फ इल्म वालों को हासिल है। ये फख्र सिर्फ इनको हासिल है। और क़ियामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन लोगों का हश्र होगा उनमें पहली जमात ही उलमा की होगी। ये वारिस, इनके अलावा बाकी जितने लोग हैं वो इनसे लेने वाले हैं, इनसे लेने वाले हैं, जो कुछ भी है उलमा से लेकर है। कभी वास्ते से आपने एक आलिम से लिया, किसी आम आदमी ने आपसे लिया, लेकिन जाएगा तो उलमा के पास ही जाएगा मामला। और रोजी के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें, रोजी के बारे में बिल्कुल, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा इसलिए है कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करके उस पर अमल करो, इसलिए हमें दुनिया में भेजा है, रोजी कमाने के लिए नहीं भेजा है। अल्लाह ने यह नहीं कहा है कि तुम मेहनत करो न करो मैं तुम्हें इल्म दूंगा, तुम मेहनत करो न करो मैं तुमसे अमल करवाऊंगा, ये नहीं कहा। इल्म मैं दूंगा मगर उसके लिए मेहनत करो, इल्म अमल पर मैं लाऊंगा मगर उसके लिए मेहनत करो, तुम्हारी कोशिश के नतीजे में इल्म और अमल की तौफीक मिलेगी। और रोजी के बारे में अल्लाह ने कह दिया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जितनी रोजी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है मेहनत करोगे कि नहीं करोगे वो मिलकर रहेगी। ऐसे लड़के हैं कि नहीं घरों के अंदर जो 16 साल की उम्र को पहुंचने के बाद बिल्कुल काम नहीं करते, माँ बाप थक जाते हैं उनसे। मैं ऐसे नव उम्र लड़कों को जानता हूं जो 10-10 साल से माँ बाप के कंधों पर बोझ बने हुए हैं, बिल्कुल काम नहीं करते, लेकिन माँ बाप उनको दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, खुशी से खिलाएं, नाराजगी से खिलाएं, गालियां देकर के खिलाएं, लेकिन खिलाते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह नदवतुल उलमा के बानी हैं। बड़े बड़े जो मदारिस हैं उनमें एक मदरसा है दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में, उसके बानी मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह। ये तालिब इल्म थे और तालिब इल्मी के जमाने में इनके वालिद का इंतकाल हो गया और हालात खानदान के ऐसे थे कि इनके लिए जरूरी हो गया तालीम को छोड़कर अपने अपनी माँ और अपने अपनी बहनों को, हो सकता है कि छोटे भाई भी हों, उनको पालने का पोसने का। तो इनके वालिद से मोहब्बत रखने वाले जो लोग थे उन्होंने इनको बिठाया और कहा कि बेटा तुम छोड़ दो अब ये तालिबे इल्मी, तलब इल्म छोड़ दो, इसलिए कि अब ये अल्लाह की तरफ से फरीजा आ गया तुम पर, ये भी एक फर्ज चीज है, खुद को पालना, माँ बाप को, अपनी माँ को पालना, खर्चा खिलाना पिलाना। तो बहरहाल बादिल नाखास्ता ये तैयार हो गई, लेकिन दिल में कुड़न बहुत ज्यादा थी, कलक बहुत ज्यादा था कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एक तो है ना कि दिल चाहता ही था और बहाना मिल गया, तो मगरमच्छ के आंसू बहा करके मदरसे से जाएगा कि हजरत मैं तो जाना नहीं चाहता था लेकिन अब क्या करें। नहीं, बहुत कुड़न हुई, बहुत कलक हुआ, लेकिन बिल आखिर नौकरी मिल गई और नौकरी का पहला दिन है कल, तो आखिरी दिन तक पढ़ते रहे। ये नहीं कि बस अब तो नहीं, आखिरी दिन तक कि जितना पढ़ सकूं पढ़ लूं, आखिरी दिन तक पढ़ा, कल नौकरी, रात को नींद नहीं आ रही है, बिस्तर में लेटते हैं, करवटें बदलते हैं, बिस्तर से निकल जाते हैं, फिर बिस्तर में दाखिल होते हैं। इसी बेचैनी के आलम में शेल्फ पर से एक किताब उठाई, गालिबन हिया उलूमुद्दीन थी, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। होता है ऐसा, जब आदमी बेकरार होता है, परेशान होता है, कुछ उठाता है, कुछ रख देता है, कुछ पढ़ता है, फिर रख देता है, उसको उठाया, उठा करके देखा तो सबसे पहली नजर जो है एक हदीस कुदसी पर पड़ी, और उस हदीस कुदसी में यह था कि ए इब्ने आदम, तू भी अजीब है, गौर से सुनिए, माँ बाप खास तौर पर जिनको अपने बच्चों की रोजी की बहुत फिक्र होती है, आप क्यों फिक्र करते हैं, ये तो अल्लाह की फिक्र है। आप क्या समझते हैं कि आप अपने बच्चे को पालते हैं, आपके जरिए अल्लाह पाल रहा है, आप नहीं पालते। आप अभी मर जाएं तो कौन पालेगा आपके बेटे को? फारिग होने के बाद पीछे पड़ जाते हैं कि कुछ नौकरी ढूंढो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और दुनिया में डाल देते हैं और अच्छे अच्छे तलबा जाये हो जाते हैं, हमारी 6 साल की मेहनत बेकार जाती है। मौका दो उनको। मैं जब दारुल बरी से मुस्ताफी होकर के यहां पहुंचा, मेरे वाली साहिब रहमतुल्लाह अली की वफात के बाद, तो मेरी वालिदा ने एक दिन भी मुझे ये नहीं कहा कि बेटा तुम तो यहां आ गए हैं, खाते पीते हैं और घर का खर्चा होता है, कुछ तो आप सोचो। एक मर्तबा नहीं कहा। अगर वो मुझे कहती तो शायद इस वक्त हम इतनी बड़ी इस्लामिक दावा एकेडमी की इमारत में न बैठे हुए होते। एक मर्तबा नहीं कहा मुझे। वो खुश थी कि हमारा बेटा 24 घंटे काम में लगा हुआ है, फारिग नहीं बैठा हुआ है, एधी बनकर के सोया हुआ नहीं है, घूम फिर नहीं रहा है, दिन के काम में लगा हुआ है। ऐसे बच्चे को अगर मैं खिला दूं तो इसमें क्या हर्ज है? तो हदीस कुदसी पढ़ी कि ए इब्ने आदम, तू भी अजीब है, मेरी मखलूक में से जब तेरी कोई दावत कर देता है कि बुध की शाम को आपकी दावत, तो तू मुतमईन हो जाता है। और मैंने तेरी पूरी जिंदगी की दावत कर रखी है और खालिक पर तुझे इत्मीनान नहीं? मैंने तो पूरी जिंदगी की तेरी दावत कर रखी है, मैंने कह रखा है कि मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे पिलाऊंगा। وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا। आगे जुमले में ये कहा कि अल्लाह ताला शानहु हर शख्स की परमानेंट रहने की जगह को भी जानता है और टेम्पोरेरी रहने की जगह को भी जानता है। इसका मतलब यह है कि परमानेंट जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो किसी इदारे में लिखवा कर जाना नहीं पड़ता कि मेरा खाना वहां पहुंचा देना, अल्लाह खुद पहुंचा देता है। ये हफीज हमारा पाकिस्तान से आया हुआ है और आज लेस्टर में है, तो अल्लाह को पता है कि हफीज की रोजी लेस्टर में इस्लामिक दावा एकेडमी में पहुंचानी है। भाई मैं अचानक अगर आपके यहां शाम के वक्त आ जाऊं तो मुझे खिलाएंगे कि नहीं? आप क्यों खिला रहे हैं मुझे? ये खाना कहां से आया है मेरा? अल्लाह पहले से पहुंचा चुका है मेरा खाना। इसीलिए मेरे वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेहमान जब हमारे घर में आता है तो बोझ महसूस नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो अपनी खुद की रोजी खाता है, वो हमारा कुछ नहीं खाता। ये तो अल्लाह का फजल होता है कि वो अपना खाना खाता है और एजाज हमें मिल जाता है। मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब यह हदीस पढ़ी, किताब बंद कर दी, और किताब बंद कर दी, बेकरारी खत्म हो गई और फैसला कर लिया कि कल से मदरसे ही जाना है, काम पे नहीं जाना है, अल्लाह खिलाएगा हम सबको। और हुआ यही, वो पढ़ते रहे और अल्लाह ने पूरे खानदान को खिलाया। और अल्लाह पर ये जो उन्होंने तवक्कुल किया, उसके नतीजे में उन्होंने बुनियाद डाली दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ की। इसलिए दिल में अहमियत पैदा करो इस इल्म की, अच्छी उम्मीदें रखो और अपने अपनी औलाद के लिए रो रो के दुआ मांगो। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, इस वक्त उम्मत को अच्छे उलमा की बहुत जरूरत है, ऐसे उलमा की जरूरत है वो सब जो सब कुछ लुटा दे। और अगर आपके बेटे को किराए के मकान में रहना पड़े, छोटे से मकान में रहना पड़े, कोई हर्ज नहीं, रह रहा है। अगर खुश्क रोटी खानी पड़े, कोई हर्ज नहीं। आप इसे नाकामी ना समझे कि इल्मे नबुवत की वजह से नाकामी हुई है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर खुश्क रोटी खाने की नौबत आए तो आपका बेटा दूसरे उलमा से ज्यादा कामयाब है, इसलिए कि उसकी जिंदगी नबी की जिंदगी से ज्यादा मुशाबे है, वो ज्यादा कामयाब है। फिक्र तो आपको तब होनी चाहिए जब माल की रेल पेल हो जाए कि ये क्या हो गया, मैंने तो मेरे बेटे को दीन के लिए वकफ किया था और ये माल की रेल पेल कहां से आ गई, उस वक्त फिक्र होनी चाहिए। वक्त मुझे इजाजत नहीं देता और अलील भी हूं। حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ طالب علم پڑھنے کے لیے آیا, اور اس زمانے میں اسی بورڈنگ کا نظام نہیں تھا. طالب علم آتا تھا, اجازت طلب کرتا تھا کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. استاد کہہ دیتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے, فلاں وقت سے فلاں وقت تم آ جایا کرو. اور لوگ پڑھتے تھے, تہجد سے پہلے بھی پڑھتے تھے, وقت ایسا بھی ملتا تھا, ایسا بھی ملتا تھا. قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے کہا کہ آپ مجھے ذرا قرآن تجوید میں بہت ماہر تھے پڑھائیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس تو وقت نہیں, 24 آور میرے مشغول ہے. اس نے جب اصرار کیا تو کہا کہ ایسا کرو کہ تہجد کے ایک گھنٹے پہلے ہمارے پاس آ جایا کرو, تہجد کی نماز کے ایک گھنٹے پہلے آ جایا کرو. وہ دور بھی رہتے تھے ان سے پرانے زمانے میں. 2 سال تک مسلسل گئی, کمال شاگرد کا بھی اور کمال استاد کا بھی. اور وہ یہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی بہت بارش ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے میں غیر حاضر ہوتا تھا, لیکن 2 سال میں استاد محترم جو فی سبیل اللہ پڑھا رہے تھے ایک مرتبہ بھی ناغہ نہیں کیا, ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ آج میں نہیں پڑھا سکوں گا. یہ دین میرے بھائیو علماء کی بہت قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے. علماء کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو. علماء اپنی قربانیوں کو بیان نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء نے کچھ کیا نہیں ہے اور کچھ کرتے نہیں ہیں. یہ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو ابھی چند سالوں پہلے انتقال ہوا. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. اس کے بعد طالب علم کو خود اپنا سونے کا انتظام کرنا ہوتا تھا, تو وہ کسی مسجد میں جا کر کمیٹی سے بات کرتا تھا کہ میں یہاں رات کو سو سکتا ہوں. اچھی بات ہے بھائی, سو سکتے ہیں. کھانا پینا اگر کوئی کھلا دے تو ٹھیک ہے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کھانے پینے کا تمہارا کیا انتظام ہے؟ تو کہا حضرت اللہ مالک ہے. کہا اللہ تو مالک ہے مگر کوئی سبب تم نے سوچا ہے؟ تو کہا کہ حضرت نہیں, سبب تو کوئی نہیں ہے مگر اللہ مالک ہے. دیکھو اللہ بھی بھروسہ کیا نا. لیکن استاد جی کو فکر تھی, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ کھلاتے. تو کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ میاں تمہارا کھانا پینا کا حضرت بڑے مزے سے گزر رہی ہے. بڑے مزے سے گزر رہی ہے. کہا حضرت جس مسجد میں مجھے قیام کی اجازت ملی ہے اس علاقے میں ایک بڑے میاں کا انتقال ہو گیا, تو اس کے گھر والوں نے مجھے کہا کہ ایک مہینے کے لیے دونوں وقت کھانا ہماری طرف سے آیا کرے گا ہمارے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. تو کہا بہت اچھی گزر رہی ہے ہماری, تو بڑے مزے کے کھانے آ رہے ہیں. ایک مہینہ گزرا اور اس پر مزید 2-4 دن اور ہو گئے. تو حضرت نے پوچھا کہ میاں تمہارا کھانا حضرت بڑے مزے سے گزر رہی ہے. کہا کیا؟ کہ وہ 30 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور صاحب کا انتقال ہو گیا. بھائی اللہ کھلاتے ہیں نا, جو بھی سبب ہو اللہ کھلا رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ایصال ثواب کی نیت سے جب کھلا رہے ہیں تو عمدہ عمدہ کھانا کھلائیں گے کہ اس کے دل سے دعا نکلے گی ہمارے مرحوم کے لیے. وہ وقت جب پورا ہوا تو پھر حضرت نے فکر کی کہ کیا ہوا بھائی تمہارا کھانا, حضرت خوب چل رہا ہے. کہا کیا؟ کہ تیسرے کا بھی انتقال ہو گیا. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنے شاگرد کو بھیجا کہ یہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں والوں کو جمع کرو, ذمہ داروں کو, اور یہ کہو کہ یہ بستی اس کے کھانے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لے ورنہ یہ پوری بستی کو کھا جائے گا. یعنی یہ سیریس بات کہلوائی کہ اللہ اس کے لیے انتظام کر رہا ہے, یہ پوری بستی کو کھا جائے گا, اس لیے آپ لوگ اپنے ذمے لے لو اس کا کھانا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو فکر نہ کرو, علم حاصل کرنا ہے, آپ کو بھی علم حاصل کرنا ہے. یہ طلبہ جو ہیں وہ پوری شریعت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کرو. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ آپ کے بیٹے کے ذریعے, آپ کی بیٹی کے ذریعے خلق کثیر جنت میں جائیں لیکن آپ ماں باپ محروم رہیں. ہوتا ہے ایسا کہ ماں باپ مانتے نہیں اولاد کی بات, اولاد کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتے. ماں باپ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ چند سالوں کے بعد شکایت کرنی چاہیے کہ بیٹا ہم نے تو تمہیں ہماری جنت بنانے کے لیے بھیجا ہے اور تم ہمیں کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں, کچھ بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ گھر میں کچھ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے. जब तुम छुट्टियों में आते हैं तो एज अ फैमिली हम सब बैठ जाते हैं, रोजाना हमें कुछ 10-15 मिनट नसीहत कीजिए, किसी किताब में से कुछ तालीम करके हमें समझाइए। ये भाइयों बहनों के लिए बहुत अफसोस की बात होगी कि खलके कसीर आपके भाई की वजह से जन्नत में जाए, आपकी बहन की वजह से जन्नत में जाए और आप महरूम हो जाए। सबसे पहले खानदान को फायदा उठाना चाहिए, इसलिए दिल बड़ा रखें और आज यहां से इस तसव्वुर को लेकर के उठते हैं, तसव्वुर क्या बल्कि इस अकीदे को लेकर के उठते हैं, जो अकीदा हमारा होना चाहिए कि हमारे बच्चे को अल्लाह ताला शानहू ने, हमारी बच्ची को अल्लाह ताला शानहू ने जिस इल्म के लिए कबूल कर लिया है, ये सबसे आला दर्जे का इल्म है। ये वो इल्म है जिसके लिए अंबिया को भेजा जाता था, यानी ये ऐसा इल्म है कि डायरेक्ट अल्लाह ने इंसानों को नहीं दिया, उसके लिए खास अंबिया को भेजा जाता था कि नहीं ये इनके वास्ते से मिलेगा, इंसानियत की क्रीम उनको भेजा जाता था कि इनके वास्ते से मिलेगा। इसके लिए हजरत जिब्रील को भेजा जाता था कि तुम लेकर के जाओ इस इल्म को। और ये जितने भी उलूम आए उनमें से सबसे आला जो उलूम नाजिल किए गए वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये पुख्ता इरादा लेकर के यहां से हम सबको उठना है, तलबा को भी, तालिबात को भी, माँ बाप को भी, मुतालिकीन को भी, कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तलबा तालिबात ये नियत करे कि हम हमारी पूरी जिंदगी इस इल्म के हुसूल में और इस इल्म पर अमल करने में और इस इल्म के प्रचार में सर्फ कर देंगे, हमारी सारी तवानाइयां, हमारी सारी सलाहियतें। और माँ बाप को भी ये तय करना चाहिए कि हम हमारे बच्चे को वक्फ करेंगे, इस काम के लिए वक्फ करेंगे, बच्चा वक्फ हो। अगर बच्चा दीन की खिदमत की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा है तो माँ बाप को रोना चाहिए, दूसरों के पास जाकर शिकवा करना चाहिए, दूसरों से दुआएं करानी चाहिए कि हमने बड़ी उम्मीदों से इसको पाला था और पढ़ाया था और ये निकम्मा निकला, रोना चाहिए। और आप हजरात की खिदमत में बहसियत बापों के, बहसियत माओं के ये भी दरख्वास्त करूंगा कि आप आम दिनों में भी इस्लामिक दावा एकेडमी में आते जाते रहिए, ताकि ये बातें आपके कानों में पड़ती रहें, ताकि हमारा आपका और आपके बेटे का जहन एक बने। जो माँ बाप बकसरत यहां आते हैं, यहां की बातों को सुनते हैं, उन फारिग होने के बाद उनके साथ इतना मसला नहीं होता, इसलिए कि ट्रायंगल मुकम्मल होता है, लेकिन जिनके वाली ताल्लुक नहीं रखते वहां प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए कि हम कुछ कहते हैं, माँ बाप कुछ कहते हैं, अब बच्चा बीच में उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसे कि 6 साल यहां रहा हुआ होता है तो वो समझता है कि मेरे माँ बाप मेरे हक में खैरखा तो बहुत है, लेकिन माँ बाप के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है इस फील्ड की जो मेरे असातिदा के पास है, लिहाजा मेरे लिए उनका ओपिनियन बहुत अहम है। लेकिन माँ बाप के साथ घर में रहना है, उनके साथ ताल्लुक तोड़े कैसे, तो टोन बिटवीन टू वर्ल्ड, और हम भी ऐसी जगह पर फिर पीछे हट जाते हैं। इसलिए कि बच्चों को माँ बाप से लड़ाना ये तो अच्छा काम नहीं है। तो होता यह है कि हम भी पीछे हट जाते हैं, सही मशवरा नहीं दे पाते और कहते हैं कि भाई माँ बाप जो कह रहे हैं शरी हद में रह करके करो, अगरचे तुम्हारा फ्यूचर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है दीनी एतबार से, तो नुकसान होता है उनका। इसलिए आते जाते रहना चाहिए आप हजरात को, यूं भी असातिदा को मिलने के लिए आना चाहिए, फोन कीजिए मौलाना आयाज साहिब को, मौलाना यासिन साहिब को, और कहिए कि मैं अपने बेटे के, आज तो बहुत हमाहमी होगी, सब आए हुए हैं, यूं भी आना चाहिए। आप 2 महीने के बाद आइए, 1 महीने के बाद आइए और पूछना चाहिए कि हमारे बेटे का क्या प्रोग्रेस है। इसलिए कि ये आपकी औलाद और हमारी औलाद, हम दोनों की औलाद है, हमारी भी औलाद है, आपकी भी औलाद है। आपके जो बच्चे हैं ये हमारे भी बच्चे हैं, हमारे रूहानी बच्चे हैं आपके, ये खूनी रिश्ते के बच्चे हैं। तो हमें मिलजुल कर इनका फ्यूचर बेहतर से बेहतर कैसे बने, दुनियावी एतबार से भी ये मोहताज ना हो किसी के, दुनियावी एतबार से भी इज्जत वाले हों और बड़े से बड़ा काम करें, आपका दिल भी खुश हो जाए, हमारा दिल भी खुश हो जाए। हो सकता है कि आप वो दिन देखने के लिए दुनिया में जिंदा न रहे, अल्लाह आप सबको जिंदा रखे, लेकिन कब्रों में इनकी खिदमतों की वजह से इतनी रहमतें आपकी कब्रों पर नाजिल होगी कि आपका दिल वहां खुश हो जाएगा, सब पता चलता रहेगा आपको। और आप उस वक्त ये कहेंगे कि मैंने जिंदगी में और तो कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन ये सबसे फैसला मैंने किया कि मेरे बेटे को मैंने आलिम बना दिया और उसको दीन का खादिम बनाया। अल्लाह ताला शानहू हमारे इन बच्चों को बच्चियों को बेइंतहा कबूल फरमाए, आप सबके आने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनको भी हमें भी आप सबको भी मरते दम तक तलब इल्म का शौक नसीब फरमाए। उलमा के पास बैठा करो, आप भी उलमा से इल्म हासिल करो, उलमा के पास बैठा करो और इल्म हासिल करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, उस पर अमल करो, दूसरों तक पहुँचाओ। और अल्लाह ताला शानहू इस्लामिक दावा एकेडमी को भी और पूरी दुनिया में जितने मदारिस हैं उन सब की खूब हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला शानहू दीन की हिफाजत और इशात का काम जो मदारिस से ले रहा है अल्लाह ताला कियामत लेता रहे। अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को बेइंतहा कबूल फरमाए, पूरे आलम में इल्म के आम होने का जरिया बनाए। अल्लाह ताला शानहू हम सबको आफियत वाली खिदमत दीन वाली तवील उम्र नसीब करे। और ये इल्म और खिदमत इल्म और इशात इल्म हमारी नस्लों में क़ियामत तक बाकी रखे। शुरूर फितन से हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, हम सबको कबूल फरमाए, हम सबको कबूल फरमाए, हम सबको कबूल फरमाए। इल्म में बरकत नसीब करे, इल्म में नूरानियत नसीब करे, इस इल्म पर अमल की तौफीक अता फरमावे इस्तिकामत के साथ इखलास के साथ। और इस इल्म को पूरे आलम में आम करने का जज्बा नसीब करे, उसके लिए हिम्मत और वसाइल मुहैया करे। अल्लाह ताला इस इल्म को हमारे लिए आखिरत में निजात का जरिया बनाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबीही अजमईन।